परमेश्वर में प्रभु का जीवन वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योना नबी की पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर की दया। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सबों ने देखा कि योना को समुद्र में फेंक दिया गया और इतना ही नहीं, एक मछली ने उसे निगल लिया और तब योना मछली के पेट में प्रार्थना करता है। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर में रह करके भी आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम योना नबी की पुस्तक से अध्ययन को करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, ताकि हर एक जो आपके वचन में से सुनता है तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि प्रभु आज का यह अध्ययन हम में से हर एक के आत्मिक उत्थान का कारण बन सके। योना नबी की पुस्तक के द्वारा हम सब से आप बोले और बातचीत करें, हमें सिखाएं, ताकि हम आपके प्रेम में बढ़ने पाए। प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि योना को मछली ने निगल लिया और वह मछली के पेट में जाकर प्रार्थना करता है। तो आइए उसी क्रम में हम लोग देखेंगे योना की प्रार्थना को। योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद, योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। यहां पर ध्यान दीजिए, वह कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि वह कहता है कि उसने मेरी सुन ली। तब हम आगे देखते हैं, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। धर्मशास्त्र में अधोलोक से कभी अभिप्राय कब्र है तो कभी अदृश्य संसार से, अर्थात जहां मनुष्य मरणोपरांत जाता है, अतः इसका संदर्भ मृत्यु से है। योना कह रहा है कि वह मर जाएगा। परमेश्वर उसकी वाणी सुनकर उसे मृतकों में से उभारे। मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए सेमिनारी का विद्यार्थी ही था, तब मुझे एक कलीसिया में कुछ समय प्रचार करने के लिए बुलाया गया। मैंने सुसमाचार प्रचार किया और पुकार के बाद अनेक युवक युवती सामने आए। जब मैं उनसे बात करने के बाद आराधनालय के पीछे गया, तब वहां एक युवक मुझसे मिला और उसने कहा, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं, परंतु मुझे एक समस्या है। उसने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक मनुष्य 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा होगा। मैंने कहा, आपसे किसने यह कहा है? उसने कहा, बाइबल कहती है और प्रचारक भी यही कहते हैं, परंतु मेरा एक अध्यापक इसका ठट्ठा करता है। मैंने उससे कहा, मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। मैंने योना नबी की पुस्तक अध्याय 2 खोलकर पढ़ा और उससे कहा कि योना ने स्वयं कहा है कि वह अधोलोक में था, अर्थात वह मृतक था, क्योंकि जीवित मनुष्य अधोलोक में नहीं जाते हैं। मेरे मित्रों, उसने कहा, आपके कहने का अर्थ यह है कि योना मर गया था और परमेश्वर ने उसे जीवित किया। मैंने कहा, जी हां, ऐसा ही हुआ था। तो फिर यह तो योना की 3 दिन रात जीवित रखने से भी बड़ा चमत्कार है। हां, क्योंकि हम ऐसे और भी अनुभव को देखेंगे। मेरे प्रियो, योना को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मर जाएगा, अतः उसने अधोलोक से मछली के पेट में से परमेश्वर को पुकारा। योना ने अपना वृतांत मछली के पेट में नहीं लिखा था, उसने बाद में इसे लिखा है। डॉक्टर एम आर डेहान ने जब इस दृष्टिकोण का उल्लेख किया, तब लोगों ने उनमें विश्वास के कारण इसे स्वीकार किया, अन्यथा तब तक मैं इस विचार का अकेला ही समर्थक था। मेरे प्रियो, यदि आप यह मानते हैं कि परमेश्वर ने योना को मछली के पेट में जीवित रखा, तो परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परंतु आपका यह विचार युवकों को बाइबल की रक्षा करने में बाधा न बने। उस युवक ने अपने अध्यापक को बताया कि बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात जीवित था। मुझे एक सज्जन ने लिखा कि योना को मछली के पेट में मृतक बताने में मैं कल्पना की सीमा पार कर जाता हूं। क्यों? मेरे प्रियो, यदि आप योना को मछली के पेट में जीवित मानते हैं, तो आप बहुमत के साथ हैं। मैंने तो बचपन में एक चित्र भी देखा था कि योना मछली के पेट में टेबल पर खाना खा रहा था। आपके विचार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि आप सही बात अपनाना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ खड़े होना है। मेरे मित्रों, अब प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर योना को मछली के पेट में जीवित रख पाया था या नहीं। मुख्य प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर ने उसे जीवित रखा? जी हां, यह चमत्कार उसे जीवित रखने का नहीं है, उसे जीवित करने का है, क्योंकि यह पुस्तक पुनरुत्थान का उदाहरण देती है। अतः मैं यह मानता हूं कि परमेश्वर ने मृतक योना को जीवित किया था। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, तो क्रोधित ना हो, मुझसे खिन्न ना हो, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण ने अनेक युवकों की सहायता की है, जैसा वह विद्यार्थी जिसका अध्यापक योना की पुस्तक का ठट्ठा करता था। अनेक जन मेरे विचार के द्वारा मसीह के उद्धारक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब बड़ी मछली के पेट में जीवित रहना कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो व्हेल मछली के पेट में जाकर जीवित आए हैं। बाइबल की एक बहुत अच्छी शिक्षिका ग्रेस डब्ल्यू केलोग ने मुझे अपनी पुस्तक की एक प्रति दी, द बाइबल टुडे। उन्होंने भी यही माना था कि योना उस मछली के पेट में जीवित था। इसके अनेक उदाहरण हैं। मैं उनकी पुस्तक से उदाहरण देता हूं। गहरे समुद्र के 2 भीमकाय जलचर हैं जिन्होंने योना को निगल लिया होगा, सल्फर बॉटम व्हेल और व्हेल शार्क। इन दोनों के ही दांत नहीं होते हैं, वे अपना मुंह खोलकर बहुत तेज तैरती हैं, और जो कुछ उनके मुंह में आ जाता है उसे वे छानकर निगल जाती हैं। सल्फर बॉटम व्हेल 100 फुट लंबी होती है 1933 में उसे रासकॉड में पकड़ा भी गया था। उसका मुंह खोलकर 10-12 फुट का होता है, जिसे उन्होंने देखा, इतना बड़ा कि घोड़ा भी आसानी से घुस जाए। उसके पेट में 4 से 6 कक्ष होते हैं, जिनमें मनुष्य का पूरा समुदाय रह सकता है। उसके सिर में 7x7x14 फुट का हवा का कक्ष होता है, जो मनुष्य को सांस लेने में प्रबंध करता है। यदि उसे किसी वस्तु से पेट में परेशानी होती है, तो वह उसे समुद्र तट पर उगल देती है। उसने योना के साथ भी ऐसा ही किया होगा। क्वीबलैंड प्लेन डीलर ने डॉक्टर रेनसम हार्वे का लेख छापा कि एक कुत्ता जहाज पर से खो गया था। 6 दिन बाद वह व्हेल मछली के सिर में भौंकता हुआ पाया गया। फ्रैंक वुलेन ने क्रूस ऑफ द कैथेलॉट लिखा था। उनके अनुसार एक व्हेल मछली के पेट में 6 फुट की शार्क पाई गई थी। मरते समय व्हेल मछली कैसे करती है? स्वर्गीय डॉक्टर डिक्सन ने कहा था कि बेरूत के संग्रहालय में व्हेल शार्क का बड़ा सिर रखा है, कि वह इतिहास में सबसे बड़े मनुष्य को निगल सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि भूमध्य सागर में श्वेत शार्क ने एक बार पूरा घोड़ा निगल लिया था। एक ने 12 सिंघा को निगल लिया और सिंहों को छोड़ दिया। एक श्वेत शार्क में बैल के बराबर की समुद्री गाय पाई गई थी। मेरे मित्रों, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि योना को किसी व्हेल या शार्क ने निगल लिया था। क्या योना के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष अपनी कहानी सुनाने को किसी विशाल जल जंतु के पेट से निकलकर आया है? 2 ऐसे उदाहरण हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम डे पारविले ने लिखा कि दक्षिण अमेरिका के निकट फॉकलैंड द्वीप समूह में जेम्स बार्टले समुद्र में डूब गया था। 2 दिन बाद वहां के नाविकों ने एक व्हेल पकड़ी। जब उन्होंने उसको चीरा, तब वे उसके पेट में बेहोश पड़े अपने मित्र को देखकर दंग रह गए थे। होश में आने के बाद वह पूर्ण स्वस्थ था। दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं। लॉस एंजलिस के विज्ञान ब्यूरो के अध्यक्ष डॉक्टर हेरी रिमर एक घटना का वर्णन करते हैं। व्हेल शार्क को पकड़ने के प्रयास में एक अंग्रेजी नाविक समुद्र में गिर पड़ा और उस मछली ने उसे निगल लिया। इस दुर्घटना के 48 घंटे बाद वह मछली दिखाई दी और नाविकों ने उसे मारा। उसके चीरने के बाद नाविक अपने साथी को उसके पेट में जीवित परंतु बेहोश देखकर अचंभित थे। अस्पताल ले जाने पर वह केवल ग्रस्त पाया गया और होश आने पर पूर्ण रीति से स्वस्थ था। अंत में वह लिखते हैं कि उस मनुष्य को 20वीं शताब्दी का योना कहकर लंदन संग्रहालय में एक आना शुल्क पर प्रदर्शनी में रखा गया था। मेरे मित्रों, यदि 2 मनुष्य जलचर के पेट में 2 दिन जीवित रह सकते हैं, तो क्या परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता उसके पेट में जीवित नहीं रह सकता था? क्योंकि परमेश्वर उसकी सुधि ले रहा था। वह क्या एक दिन रात अधिक मछली के पेट में नहीं रह सकता था? अतः हम परमेश्वर के वचन पर संदेह क्यों करें? यदि योना भी इन मनुष्यों के समान मछली के पेट में जीवित था, तो इसमें चमत्कार की कोई भी बात है ही नहीं। चमत्कार तो यह है कि परमेश्वर ने मृतक योना को जीवित किया। मेरे प्रियों, मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर योना को मछली के पेट में 3 दिन रात रख सकता है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर ने यह किया? क्या वृतांत में यही लिखा है? मेरे प्रियो, योना को नाविकों ने समुद्र में फेंक दिया और उसे एक जल जंतु ने निगल लिया। योना 3 दिन रात उस जल जंतु के पेट में था। योना कहता है कि अधोलोक के उदर में से उसने पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी और उसकी सुधि ली। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में जीवित रखा, परंतु यह कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। अतः उचित यह है कि हम परमेश्वर का चमत्कार इस बात में माने कि वह मृतकों में से जिलाया गया, न कि इस बात में कि परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में जीवित रखा, क्योंकि हमने अनेक उदाहरण देखे हैं जिनमें मनुष्य 2 दिन बाद भी मछली के पेट में से जीवित निकाला गया है। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, हम इसे हल्की बात में ना लें। कहने का अर्थ यह है कि हल्की बात न समझें। यदि योना मछली के पेट में था तो वह मछली का सा जीवन ही व्यतीत कर रहा था। वह कहता है, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। उसका वहां जीवित रहना आदि शैतान से प्रेरित विवाद है कि हम पुनरुत्थान पर ध्यान ना दें। हम योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। यहां पर लिखा है, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। मेरे प्रियो, योना मृत्यु के बारे में कह रहा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। योना का विश्वास था कि वह मृतकों में से जिलाया जाएगा। योना पुरानी वाचा का था और मेरे विचार में वह उन लोगों के मध्य था जो आराधना के लिए यरूशलेम के मंदिर में जाते थे। सब इसराइली जानते थे कि जीवित परमेश्वर की आराधना का एकमात्र स्थान सुलेमान का मंदिर है। इसीलिए योना कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा। क्या आपको यह एक जीवित मनुष्य की बात प्रतीत होती है? आगे लिखा है योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 5 पद में, मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, अर्थात मैं भीग गया था, मेरे ऊपर सिवार लिपटा हुआ था। मैंने वहां 25 फुट लंबी सिवार देखी है। इस मछली के पेट में भी सिवार भरी हुई थी जिनमें योना लिपटा हुआ था। क्या वह अपने आनंद की व्याख्या कर रहा है? वह तो मृत्यु की गहराई की चर्चा कर रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर योना कठिन परिस्थिति में है और वह अपने मृत्यु की चर्चा कर रहा है और कहता है कि वह किस प्रकार की कठिन परिस्थिति में है। आज मुझे और आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि योना समुद्र के अंदर मछली के पेट में मरा और परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया, और यही एक अद्भुत चमत्कार है जिसे परमेश्वर यीशु के जीवन के द्वारा भी हमें प्रमाणित करना चाहता है। प्रभु में मेरे प्रियो, मेरे श्रोताओं, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य कर सकता है, आपके जीवन की उन प्रार्थनाओं को सुन सकता है। चाहे आप कहीं पर क्यों ना हो, जब आप उसे पुकारेंगे तो वह आपकी आवाज सुनेगा, आपके जीवन में उन अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने? यदि हाँ, तो योना की तरह आप भी उसे पुकारें, उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग उससे पुकारें। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में, हे सब परिश्रम करने वाले और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, वह आपको बुला रहा है और वह चाहता है कि आप उसके पास आएं। जब आप उसकी आज्ञाओं को मान करके उसके पास आएंगे, तो निश्चय ही जानिए कि वह आपको विश्राम देगा, वह आपको आनंद देगा, वह आपको शांति देगा जो इस संसार से बिल्कुल परे है। परमेश्वर अपने कार्यों को अपने तरीके से करता है और वह चाहता है कि उसके लोग शांति और आनंद प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि और अधिक आप परमेश्वर के वचन में बढ़ने पाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।